दिन भर 16 मार्च दिन गुरुवार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। गोवा में मात्र 13 विधायकों वाली भाजपा सरकार ने 22 विधायकों के समर्थन से जीता विश्वास मत, मगर यूपी के अलावा उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री चुनने में लग रहा है वक्त।
हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा 2 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं और वे ऑब्जर्वर शीघ्र ही देहरादून आने करके विधायक दल की बैठक करेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर कुछ राजनीतिक दलों के उंगली उठाने को बेवजह बताया चुनाव आयोग ने।
ईवीएम एक मशीन है जो एक चिप बेस्ड मशीन है और इस मशीन के अंदर कोई भी डेटा की कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसमें ना कोई हैकिंग संभव है और ना ही कोई किसी तरह का रिप्रोग्रामिंग संभव है।
चर्चा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैवल बैन लगाने की नई कोशिश की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, निखिल रंजन से। गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने सदन में बहुमत हासिल कर लिया है। मनोहर पर्रिकर को बहुमत के लिए 21 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन सदन में 22 विधायकों ने सरकार का समर्थन किया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 14 सीटों पर जीत मिली है, बाकी की संख्या निर्दलीय और छोटे दलों ने पूरी कर दी है। इस बीच कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे ने कांग्रेस पार्टी और अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने और बीजेपी सरकार का समर्थन करने की बात कही है। बीजेपी ने अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं किया है। पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू समेत 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। अल्पसंख्यक महिला विधायक रजिया सुल्तान को भी मंत्री बनाया गया है। कई यूरोपीय देशों ने नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मार्क रुते को चुनाव जीतने पर बधाई दी है। हालांकि तुर्की ने इसके उलट रुख अपनाते हुए रुते और उनके प्रतिद्वंदी विल्डर्स दोनों को फांसीवादी कहा है। विल्डर्स की पार्टी प्रवासियों और इस्लाम का विरोध करती है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलू कावसोग्लू ने अंताल्या की एक रैली में कहा, नीदरलैंड्स में चुनाव हो गए हैं, एक दल को 17% और दूसरे को 20% वोट मिले हैं, लेकिन सोशल डेमोक्रेट्स और फासीवादी विल्डर्स में कोई फर्क नहीं है। उनकी मानसिकता एक जैसी है। आप यूरोप को किस तरफ ले जा रहे हैं? आप यूरोप को तोड़ने की वजह बन रहे हैं। आप यूरोप में दरार पैदा कर रहे हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि यूरोप में धार्मिक युद्ध हो रहे हैं। नीदरलैंड्स और तुर्की की सरकारों के बीच बीते कुछ दिनों से अनबन चल रही है। तुर्की ने नीदरलैंड और जर्मनी की सरकारों पर नाजियों जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले बजट प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसमें सैन्य खर्चों में इजाफा करने के साथ ही विदेशी सहायता और पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े खर्चों में कटौती की बात की गई है। बजट प्रस्तावों में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए पैसा देना भी बंद कर दिया जाएगा। बजट प्रस्तावों में मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए भी फंड निकाला गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि इस दीवार का खर्च मेक्सिको उठाएगा। ट्रंप ने कहा है कि बजट में सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी गई है। बजट प्रस्तावों को फिलहाल कांग्रेस में भेजा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी यहां बहुमत में है। हालांकि जानकारों का कहना है कि रिपब्लिकन सदस्य भी कुछ कटौतियों का विरोध कर सकते हैं। रूस की सरकार ने किसी तरह की गैरकानूनी साइबर गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया है। एक दिन पहले अमरीकी अधिकारियों ने 2 रूसी खुफिया एजेंटों के खिलाफ इंटरनेट कंपनी याहू पर साइबर हमले का दोषी माना। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूसी सुरक्षा एजेंसियों के इस तरह की गतिविधि में शामिल होने का कोई सवाल नहीं है। अमरीकी न्याय विभाग ने 2014 के इस हमले में 2 रूसी एजेंटों के साथ 2 हैकरों को भी दोषी माना है। इन हैकरों को इस काम के लिए पैसे दिए गए। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिणी फ्रांस के ग्रास शहर में एक स्कूल में हुई गोलाबारी में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि हमलावर ने स्कूल के हेडमास्टर को निशाना बनाने की कोशिश की। इस मामले में एक 17 साल के छात्र को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रधानमंत्री बर्नार्ड कैजनेवू घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए हैं। खबरों में कहा जा रहा है कि इस छात्र के पास एक राइफल, 2 हैंडगन और कुछ हथगोले मिले हैं। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बर्नार्ड निकोलस स्कूल से कुछ ही दूरी पर एक साइकिल की दुकान चलाते हैं। उन्होंने बताया, हम जो जानते हैं वो ये है कि या तो एक या फिर कई लड़के स्कूल में बंदूक और 6 गोलियां लेकर गए। हमें ये पता है कि कुछ लड़के और छात्र जख्मी हुए हैं और अब सड़कों पर बहुत सारे पुलिस कर्मी नजर आ रहे हैं। हम स्कूल में नहीं जा सके। फ्रांस के पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय में एक पार्सल बम में धमाका होने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। बीबीसी समाचार।
आज है 9 मार्च दिन बृहस्पतिवार। दिन भर के श्रोताओं को अपूर्व कृष्ण का नमस्कार। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जितनी आसानी से सत्ता में वापसी की है, उतनी ही मुश्किल उसे हो रही है मुख्यमंत्री को चुनना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिन दो राज्यों में इसके लिए सरकार बनाना सबसे मुश्किल था, वहां आराम से मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली और उनमें से एक राज्य गोवा में आज बहुमत भी हासिल कर ली। जबकि 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में भाजपा को केवल 13 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 17। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और अदालत ने पर्रिकर सरकार को आज बहुमत साबित करने के लिए कहा था, जो उन्होंने आसानी से कर दिया। तो कैसे हुआ ये जानने के लिए मैंने बात की पणजी में वरिष्ठ पत्रकार संदेश प्रभु देसाई से।
भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस को 17 मिले थे, 40 सीटें हैं यहाँ पे, और भाजपा को 13 मिली थी। लेकिन बाकी यानी 17 और 13 मिले 30 हो गए, तो बाकी 10 जो थे वो 10 में से जो गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के तीन तीन विधायक थे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के थे एक और तीन निर्दलीय थे। तो ये सब 10 विधायक जो है वो 10 विधायकों ने अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया है, इसलिए 22 मत भाजपा को मिले, भाजपा की सरकार को। और कांग्रेस की सरकार में जो 17 विधायक हैं, 17 से उन्हें सिर्फ 16 मिले, क्योंकि विश्वजीत राणे जो कांग्रेस के तीसरी बार जो चुनाव लड़के जीत के आए हैं और पहले मंत्री भी थे, वो विश्वास मत में हाजिर नहीं रहे, वो बाहर गए विधानसभा से और बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया वहाँ।
जी तो कांग्रेस जो है उसके लिए उसको हार तो मिली ही, 17 विधायक उनके पास थे, फिर भी सरकार उनकी बनी जिनके पास 13 विधायक थे, तो कांग्रेस के लिए तो एक तरह से ये दोहरा झटका है।
कांग्रेस को दोहरा झटका डेफिनेटली है, सिर्फ विश्वास मत यानी वो तो सरकार नहीं बना सके, ये तो है ही। वो अभी दो तीन दिन थे उनकी सरकार बनने के बाद, वहां भी वो विश्वास मत यानी अपने बाजू से कोई विधायक नहीं ला सके। ऑन दी कॉन्ट्ररी ऐसा हुआ, जो उनके एक विधायक थे विश्वजीत राणे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुझे लगता है भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा जहां 3 घंटे में 12 बजे सब विधायकों को शपथ दिलाई गई थी और बाद में विश्वास मत लिया था जो सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गया। तो वो विश्वास मत के समय वो बाहर आ गए और उन्होंने 3 बजे तक इस्तीफा दे दिया। 3 घंटे में इस्तीफा देने वाले विधायक पद का ये पहले विधायक होंगे ऐसा लगता है। तो ये भी बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस को। और विश्वजीत राणे ने भी कहा है कि वो भाजपा की सरकार को अपना समर्थन देंगे और अभी तक तो ये बात चल रही है कि उन्हें मंत्रिमंडल में उन्हें ले सकते हैं या और कोई पद दे सकते हैं, ऐसा कुछ होगा।
जी और ये सब तब हो रहा है जब दिग्विजय सिंह जो गोवा के प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो वहां पर हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि कांग्रेस में वहां इस वक्त जबरदस्त जो अंदरूनी खेमा है उसमें तनाव है और एक दूसरे पर जमकर तलवारें खींची जा रही हैं?
हाँ, ये तो होते ही रहता है और होते ही जा रहा है और फिर भी वो अपनी रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि क्या है कि विश्वजीत राणे ने व्हिप जो है वो व्हिप साइन किया था और बाद में वो डिफाई किया, व्हिप के खिलाफ गए। तो कांग्रेस अभी रणनीति बना रही है, विश्वजीत राणे के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन डालेंगे और उन्हें डिस्क्वालिफाई करेंगे। ऐसा डिस्क्वालिफाई हुआ तो वो 5 बरस तक इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते विधानसभा का, ये रणनीति कांग्रेस बना रही है अभी।
और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर वो राणे तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं?
नहीं, इस्तीफा देने से कोई बात नहीं चलती। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने व्हिप डिफाई किया है, तो व्हिप डिफाई किया तो विधायक डिस्क्वालिफाई होता है, डिस्क्वालिफाई हुए तो वो फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते 5 बरस तक।
ये थे पणजी से वरिष्ठ पत्रकार संदेश प्रभु देसाई। उत्तराखंड के चुनावी नतीजे आए करीब 1 सप्ताह हो रहा है, लेकिन प्रचंड बहुमत से जीतने वाली बीजेपी में मुख्यमंत्री की तलाश अभी भी जारी है। दिल्ली से पार्टी के 2 पर्यवेक्षक नरेश तोमर और सरोज पांडे देहरादून के लिए रवाना कर दिए गए हैं। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बीच देहरादून के परेड मैदान में शपथ ग्रहण की भी जोरदार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में 57 सीटें जीतकर बीजेपी ने रिकॉर्ड तो बना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। पहले आधा दर्जन नाम दौड़ में थे, अब सुई 2-3 नामों पर आकर अटक गई है। देहरादून की डोईवाला सीट से चुनकर आए बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और झारखंड के पार्टी प्रभारी रह चुके त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व विधानसभा स्पीकर और कुमाऊं की पिथौरागढ़ सीट से चुनाव जीते प्रकाश पंत और गढ़वाल की श्रीनगर सीट से विधायक धन सिंह रावत के नाम आगे चल रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी भी दौड़ में बताए जाते हैं। बीजेपी का कहना है कि जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता देवेंद्र भसीन,
जहां तक दबाव का सवाल है तो आप इस बात को मान के चलिए कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व किसी दबाव में आने वाला नहीं है। वे प्रदेश के हित में जो होगा वे किया जाएगा, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि प्रदेशों को योग्य मुख्यमंत्री दिए जाएंगे, और डबल इंजन की बात तो प्रधानमंत्री जी कह ही चुके हैं, ऐसे विषय पर उनका विचार चल रहा होगा।
इस बीच देहरादून के परेड मैदान पर मंच सजने लगा है, कुर्सियां बिछाई जा चुकी हैं और साथ सजावट की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि 18 मार्च को प्रधानमंत्री का देहरादून कार्यक्रम है। इसी से यह अटकलें भी लगभग पुष्ट होने लगी हैं कि उसी दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। देहरादून के जिलाधीश रविनाथ रमन,
अभी तक हमारे पास जो प्राप्त सूचना है उसमें 18 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ हो सकता है देहरादून में। हालांकि अभी इस संबंध में हमारे पास कोई मिनट टू मिनट प्रोग्राम अभी कोई ऐसा प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर कार्यक्रम बनता है तो काफ़ी इसमें जो सिक्योरिटी है और बाकी जो अन्य लिहाज से हमें काफ़ी तैयारियाँ करनी होंगी, और प्लस अगर शपथ ग्रहण समारोह होता है तो काफी बड़ा फंक्शन होगा, उसमें काफी सारे आगंतुकों के आने की भी संभावना होगी।
बीजेपी के लिए सरदर्द ये है कि उसे सीएम पद के लिए ऐसा नेता चाहिए जो उत्तराखंड के दोनों मंडलों यानी कुमाऊं और गढ़वाल में स्वीकार्य हो। क्षेत्रीय के अलावा जातीय समीकरण भी बीजेपी टटोल रही है। 57 विधायकों में से 20 से ज्यादा राजपूत जाति से हैं और 13 ब्राह्मण हैं। इसमें भी मजे की बात यह है कि राजपूत जाति के रावत उपनाम वाले 8 विधायक हैं। बीजेपी का कहना है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। एक बार फिर देवेंद्र भसीन,
भारतीय जनता पार्टी में एक जनतांत्रिक पार्टी है, इसमें अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, और उसके बाद जब निर्णय हो जाता है सब उसको मान्यता देते हैं। अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई दावेदारी या ऐसी कोई बात ही सामने नहीं आ रही है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा जो है 2 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं, और वे ऑब्जर्वर शीघ्र ही देहरादून आने करके विधायक दल की बैठक करेंगे।
तमाम समीकरणों के बावजूद इस बात के भी पूरे आसार हैं कि बीजेपी आलाकमान किसी अनपेक्षित नेता को सीएम के तौर पर भेज सकता है। हालांकि राज्य में बीजेपी सरकारों का पुराना इतिहास बताता है कि कोई मुख्यमंत्री 2 साल से ज्यादा कुर्सी पर टिक नहीं पाया। फिलहाल तो नेता के चयन में मर्जी, पसंद और मुहर आलाकमान की होगी, लेकिन आगे चलकर झगड़ा फसाद न होगा इस बात की गारंटी देना उसके लिए मुश्किल है। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सीएम की तलाश जारी है, और अभी खबर आई है कि 18 तारीख यानी परसों शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी और शायद उसमें नेता का चुनाव होगा। लेकिन ये मामला इतना आसान है नहीं। कितनी मुश्किल है ये मुख्यमंत्री को चुनने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसको समझने के लिए चलते हैं लखनऊ वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी के पास। रामदत्त जी, कहाँ पेंच फंसा हुआ है?
देखिए, पेच उसमें कई हैं। सबसे बड़ा पेच तो ये है कि ये सारा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता, उनके वादे, उनके भरोसे पे हुआ है। तो मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो न केवल श्री नरेंद्र मोदी बल्कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ तालमेल बिठा के काम करे, और दूसरे वो डिलीवर कर सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतने बड़ी संख्या में विधायकों को, सांसदों को और इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी को संभालना तो ये भी एक मुश्किल काम है। तो यही दुविधा है। बीच में नाम चला था काफी जोरों से राजनाथ सिंह जी का कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, पहले पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन ऐसा माना यह जाता है कि वो संघ की तो पसंद है लेकिन शायद अमित शाह जी को दिक्कत हो, क्योंकि उनसे वो उस तरह सुपर सीएम की तरह काम नहीं ले सकते, तो इसलिए अब ये देखा जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दावेदार भी बहुत हैं
जी।
केशव प्रसाद मौर्य जो प्रदेश अध्यक्ष है, योगी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सबको बुला के केंद्रीय नेतृत्व उनको समझा रहा
आपको
है।
आपको कितनी उम्मीद है कि परसों शनिवार को जो होगी बैठक उसमें कोई नाम निकल के आ जाएगा?
हाँ, ये माना जाता है, अभी मेरी बीजेपी के एक सीनियर लीडर से बात हुई कि 18 तारीख को अनाउंस कर देंगे, क्योंकि अगर नाम तय नहीं होता तो ये बैठक बुलाई नहीं जाती, तो वो करीब करीब तय हो गया है। अब उसकी घोषणा उसी समय हो जाएगी, क्योंकि विधायकों को बताना भी है सारे सीनियर लीडरों को, अपेक्षाएं बहुत है लोगों की।
जी अपेक्षाएं बहुत हैं और पूरे यूपी क्या पूरे भारत को इंतजार है कि उत्तर प्रदेश का सीएम मुख्यमंत्री कौन बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ से रामदत्त त्रिपाठी। और इस बीच बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे और उसके बाद आज चुनाव आयोग ने कहा है कि उसे ईवीएम पर पूरा भरोसा है और ईवीएम से छेड़छाड़ की ही नहीं जा सकती। दिल्ली से विनीत खरे।
उत्तर प्रदेश में भाजपा की भारी जीत के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने ईवीएम से कथित छेड़छाड़ को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने खराब प्रदर्शन के लिए भी ईवीएम पर निशाना साधा था और जांच की बात कही थी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली म्यूनिसिपल चुनाव कागज के बैलेट पर करवाने के लिए दिल्ली चुनाव आयोग को पत्र लिखा। ईवीएम पर लग रहे ये आरोप कितने सही हैं? गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी कुणाल ने बीबीसी से बातचीत में ईवीएम की कथित हैकिंग के सभी आरोपों को खारिज किया।
देखिए ईवीएम एक मशीन है जो एक चिप बेस्ड मशीन है। इसमें एक जो चिप होता है वो सिंगल टाइम प्रोग्रामेबल, मतलब उस पे एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है, उसी से सारा डेटा स्टोर होता है और मशीन का संचालन होता है और इस मशीन के अंदर कोई भी डेटा की कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसमें ना कोई हैकिंग संभव है और ना ही कोई किसी तरह का रीप्रोग्रामिंग संभव है। तीसरा से जो हमारी जो ईवीएम मशीन है पूर्णतया सुरक्षित है और इसमें हैकिंग का सवाल ही नहीं उठता है।
लेकिन ईवीएम की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम होते हैं, कुणाल बताते हैं।
इसमें पॉलिटिकल पार्टी जितनी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जिसमें की सारी राष्ट्रीय दल है या फिर क्षेत्रीय दल है, इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है, उनके सामने रेंडमाइज होता है और उनको बजाबते लिस्ट दी जाती है कि ये फलाना फलाना ईवीएम वाले जो नंबर वाले ईवीएम है कि इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, ये नंबर इस फलाने में जा रहे हैं, इस तरह से पूरा रेंडमाइज्ड होता है। उसके बाद से इनका फर्स्ट लेवल चेकिंग कहते हैं जिसमें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इंजीनियर्स होते हैं, ये इसको सारे मशीनों को चेक करते हैं जिसमें कि उसमें वोटिंग भी की जाती है और उसके बाद से उसमें कैंडिडेट सेट होता है। जो सेकेंड लेवल रेंडमाइजेशन होता है उसमें असेंबली के बाद से जो पोलिंग स्टेशन पे जो जाती है मशीनें उसका निर्धारण होता है कि किस पोलिंग स्टेशन नंबर पे किस नंबर की मशीन जाएगी, तो इसमें कौन सा कैंडिडेट किस सीरियल नंबर पे आएगा ये एडवांस में पहले से किसी को पता नहीं होता है। और पोलिंग के बाद से जब ये मशीनें स्ट्रांग रूम में जाती हैं उसमें भी केंद्रीय सुरक्षा बल इसको ले जाते हैं और साथ साथ जितने कैंडिडेट है उनके पास भी अधिकार होता है मशीन के साथ साथ चलने का।
चुनाव आयोग ने भी आज एक वक्तव्य जारी किया और सभी आरोपों को रद्द किया। चुनाव आयोग ने कहा कि इससे पहले भी मद्रास हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में ईवीएम पर सवाल उठे थे, लेकिन सभी अदालतों ने ईवीएम को भरोसेमंद बताया था और कहा था कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आयोग ने कहा कि उसने अगस्त 2009 में लोगों को आमंत्रित किया था कि वो छेड़छाड़ के आरोपों को सिद्ध करें, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था। आयोग ने कहा कि ईवीएम को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक कंपनी और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली कंपनी के चुने हुए इंजीनियर स्वतंत्र रूप से बनाते हैं। चुने हुए 2 या 3 इंजीनियर इसका सोर्स कोड डिजाइन करते हैं और इस काम का ठेका किसी और को नहीं दिया जाता। कुछ देशों ने ईवीएम का इस्तेमाल रोक दिया है। इस पर आयोग ने कहा कि उन देशों में ईवीएम इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर पर आधारित था और उन्हें हैक किया जा सकता था। आयोग ने कहा कि उसने ईवीएम की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष मशीन की जांच की जाती है। आयोग ने यह भी कहा कि अगर उसके पास तथ्यों के आधार पर शिकायत आती है तो वो उस पर गंभीरता के साथ ध्यान देगा। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 6 मुख्यतः मुस्लिम देशों के लोगों को और शरणार्थियों को अमेरिका आने से रोकने के लिए एक कोशिश की, लेकिन एक बार फिर उनके इस प्रयास को अदालत से झटका लगा। जनवरी में भी ट्रंप ने ऐसी ही कोशिश की थी और तब भी सिएटल के एक जज ने इस पर रोक लगा दी थी। पूरे ब्यौरे के साथ न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय एक और झटका लगा जब प्रतिबंध संबंधी उनके कार्यकारी आदेश पर बुधवार को हवाई राज्य में एक केंद्रीय अदालत के जज ने रोक लगा दी। ये दूसरी बार है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुछ मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमरीका प्रवेश पर प्रतिबंध संबंधी कार्यकारी आदेश पर अदालती रोक लगाई गई है। इससे पहले जनवरी महीने में अपील्स कोर्ट ने भी ट्रंप के प्रतिबंध पर रोक लगाई थी। अब इस ताजी रोक लगने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो केंद्रीय अदालत के फैसले को अपील्स कोर्ट में और अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देंगे। नैशविल टेनेसी में अपने हिमायतियों की एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा,
दिस इज इन द ओपिनियन ऑफ मेनी एन अनप्रेसिडेंटेड जुडिशियल ओवररीच। वी आर गोइंग टू फाइट दिस टेरिबल रूलिंग। वी आर गोइंग टू टेक आवर केस एज फार एज इट नीड्स टू गो इंक्लूडिंग ऑल द वे अप टू द सुप्रीम कोर्ट।
ट्रंप ने कहा कि यह अदालती फैसला बहुत खराब है और उनके मुताबिक कई लोग इसको अदालत द्वारा अपने अधिकारों से कहीं ज्यादा आगे जाना भी कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही एक नए कार्यकारी आदेश के तहत मुसलमान आबादी बहुल 6 देशों सोमालिया, सूडान, सीरिया, ईरान, लीबिया और यमन के नागरिकों के अमरीका में दाखिल होने पर 90 दिन की पाबंदी लगाई थी। इसके अलावा सभी शरणार्थियों पर भी 120 दिन का प्रतिबंध लगना था। नए आदेश में अमरीका के स्थायी निवासियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने संबंधित विवादित भाषा को भी हटा लिया गया था। ये प्रतिबंध 16 मार्च से ही लागू होना था, लेकिन 15 मार्च को ही हवाई के जज ने इस आदेश के लागू होने पर रोक लगा दी। हवाई के जज ने इस प्रतिबंध को ये कहकर रोक दिया है कि ये मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाता है। अब से कुछ देर पहले मेरीलैंड के एक जज ने भी इसी तरह के मामले में राष्ट्रपति के नए कार्यकारी आदेश पर रोक लगाई है। इन अदालतों ने इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुनावी मुहिम के दौरान दिए गए कथित तौर पर मुस्लिम और इस्लाम विरोधी बयानों को भी मद्देनजर रखा है। पिछले साल मार्च महीने में एक टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने इस्लाम धर्म के बारे में कहा था,
आई थिंक इस्लाम हेट्स अस, देयर इज अ ट्रेमेंडस हेट्रेड एंड वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी कैन अलाउ पीपल कमिंग इनटू दिस कंट्री हु हैव दिस हेट्रेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ पीपल दैट आर नॉट मुस्लिम।
मैं समझता हूं कि इस्लाम हमसे नफरत करता है, अमरीका को लेकर बहुत नफरत है और हमें बहुत होशियार रहने की जरूरत है। हम ऐसे लोगों को अमेरिका में प्रवेश नहीं करने दे सकते जो हमसे इतनी नफरत करते हैं और उन लोगों से नफरत करते हैं जो मुसलमान नहीं हैं। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि उनके प्रतिबंधों से चरमपंथ को अमेरिका में दाखिल होने से रोका जा सकेगा, लेकिन आलोचक कहते रहे हैं कि धर्म के आधार पर लोगों पर प्रतिबंध लगाना भेदभाव होगा। ट्रंप के इस प्रतिबंध को रोकने के लिए न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, ओरेगन, मेरीलैंड, हवाई समेत कई राज्यों ने अदालत में मुकदमे दायर किए हैं। जानकारों का मानना है कि अब इस प्रतिबंध से संबंधित अदालती लड़ाई कई महीने तक चल सकती है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही तय होने की उम्मीद की जा रही है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
और अब समय है आपकी राय का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और आप ही की तरफ से कह देता हूं इंदु पांडे का भी।
नमस्कार
इंदु जी, ईमेल, चिट्ठियां, पोस्ट कार्ड बहुत सारे हैं, इस बार तीर चले हैं या गुलाब के फूल हमारी तरफ आए हैं?
दोनों चले हैं।
अच्छा,
बस शुरुआत करते हैं हम अच्छी बात से। महेंद्र सहारण ने लिखा है हमें ढाबा झलार श्री गंगानगर राजस्थान से कि बुधवार को निखिल रंजन का दुनिया जहान बहुत अच्छा लगा। bbchindi.com पर रेहान फजल की रिपोर्ट मोदी लहर से भी बड़ी थी, जनता की आंधी बहुत अच्छी लगी। शिवानी कोहोक और नेहा भटनागर द्वारा बीबीसी दुनिया की प्रस्तुति शानदार होती है। नमस्कार भारत में संदीप सोनी के बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है।
महेंद्र सहारण साहब, आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और आज ही जो रेहान फजल ने एक लेख लिखा है जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किस तरह का माहौल था, वो भी आपको पसंद आया और आपने त्वरित टिप्पणी अपनी कर दी, ये ईमेल का कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सुनते रहें और आलोचना करने से घबराएं नहीं हमारी।
बिल्कुल। और ये है अक्षय प्रताप कानपुर से, इन्होंने ये पोस्ट कार्ड लिखा है कि बीबीसी भारत को हर दृष्टि से बदनाम करना चाहता है, चाहे
बीबीसी भारत को बदनाम करना चाहता है।
जी देखिए, चाहे कश्मीर मसला हो या भारत के विभिन्न स्तरों के चुनाव हो, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीबीसी ने पूरी शक्ति लगाकर भी चुनावों को प्रभावित नहीं कर पाए और बीबीसी यूपी के चुनावों को प्रभावित करना बीबीसी की क्षमता के बाहर है जो अभी हुए हैं।
क्या इन्होंने कोई ठोस उदाहरण दिए हैं जिनके आधार पर ये कह रहे हैं कि बीबीसी भारत को बदनाम करना चाहता है, या सिर्फ ये कहा है कि इनके मन में एक बात आई और इन्होंने कह दी?
इन्होंने कोई ठोस उदाहरण चिट्ठी में नहीं लिखा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे प्रोग्राम, जो भी हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, उनको सुनने के बाद इन्होंने अपनी राय बनाई।
आपकी राय तो सर माथे अक्षय प्रताप साहब, लेकिन अगर बहुत अच्छा होता आप बता पाते कि कौन सी रिपोर्ट ऐसी लगी, कौन सा इंटरव्यू ऐसा लगा जिसमें आप ये नतीजा जिसके आधार पर निकाल रहे हैं कि बीबीसी की रिपोर्टिंग में गड़बड़ी थी, तब हमें बहुत आसानी होती।
इसी तरह का एक ईमेल हमारे पास आया है। इलाहाबाद से अनिल शुक्ल ने बीबीसी की चुनाव रिपोर्टिंग की आलोचना की है। कहते हैं कि उत्तराखंड से शिव जोशी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बता रहे थे। ऐसी रिपोर्टों की क्या विश्वसनीयता है? उत्तर प्रदेश के बारे में भी सबको मालूम था, मगर आपके रिपोर्टों में सपा कांग्रेस के फायदे के संकेत दिए गए थे।
तो ये अनिल शुक्ला साहब हों या अक्षय प्रताप जी हों, एक तो बात बहुत स्पष्ट हम ये कह देना चाहते हैं कि कोई भी पत्रकार या कोई भी मीडिया आउटलेट जो है वो ज्योतिषी का काम नहीं करता है, और बीबीसी खास तौर पे ये तो कभी इस तरह का कयास नहीं लगाती है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाके जहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है, रिपोर्टर को उस वक्त जैसा महसूस होता है उस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं कि टक्कर में कौन है, कांटे की टक्कर है या नहीं है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का या पूरे उत्तराखंड का या पूरे पंजाब का एक मुश्त ये देना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो हम नहीं करते हैं। लेकिन आपको ये लगा कि बीबीसी ने पक्ष लिया है, तो मेरी सलाह है कि एक बार हम तो आत्मालोचना करेंगे ही, हम तो अपने कॉलर में झांकेंगे ही, थोड़ा सा एक बार और गौर से देख लें कि आप कौन कौन सी रिपोर्टों से आपको एतराज़ है, हमें लिख के भेजिए। मैं वचन देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि अगर कोई गड़बड़ी हुई हमारे तरफ तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि आपका भरोसा जब तक बना हुआ तब तक हम हैं, भरोसा ना तोड़िएगा।
बिल्कुल। और ये ईमेल है, गणेश प्रसाद हुजादार लिखते हैं कि रेहान फजल द्वारा लिखी प्रस्तुति में मोदी लहर से बढ़कर जनता की आंधी सुनकर खुशी हुई। जब इंदिरा गांधी ने आज से 40 वर्ष पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में वृहद आम सभा को संबोधित किया था। निष्पक्ष विचार और समाचार के लिए बीबीसी के प्रति आभारी हूँ। बिल्कुल उल्टा,
एक तरफ आरोप लगा कि हम निष्पक्ष नहीं हैं, दूसरी तरफ गणेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि निष्पक्ष समाचार के लिए वो बहुत उनको अच्छा लग रहा है। तो दोनों ही तरह की राय हमारे लिए बराबर है। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनका भी महत्व है, और जो तारीफ कर रहे हैं उनका भी महत्व है।
बिल्कुल। और आफताब हैं, काफ़ी कुछ वैसे इन्होंने ईमेल में लिखा है। कहते हैं कि दिलनवाज को मास्टर इन सर्जरी का सर्टिफिकेट देना चाहिए।
मास्टर इन सर्जरी का मतलब क्या हुआ?
ये तारीफ अखबारों की समीक्षा के लिए की गई है।
ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। नमस्कार भारत में दिलनवाज पाशा ने एकदम निचोड़ प्रस्तुत कर दिया था ताज़ा अखबारों का, और मुझे भी कार्यक्रम बहुत पसंद आया, आपको भी पसंद आया। इसी तरह लिखते रहें, दिलनवाज पाशा की भी और हमारी भी हौसला अफजाई करते रहें।
और आफताब हैं हजारीबाग झारखंड से। नईम अंसारी ने रेहान फजल से गुजारिश की है कि इरोम शर्मिला पर विवेचना की जाए।
अच्छा, इरोम शर्मिला अभी हाल में ही मणिपुर में चुनाव हार गई हैं और उनको बहुत कम वोट मिले हैं। इसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने एप्सपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बहुत सारे लोगों को लगा कि ये बहुत तारीफ की बात है। मैं रेहान साहब से ये बात उन तक पहुंचा दी जाएगी और संभव हुआ तो इस पर विवेचना होगी, लेकिन ये पूरा रेहान फजल का ही फैसला होता है, तो देखिए क्या होता है।
और ये ईमेल है सुरेश अग्रवाल केसिंगा उड़ीसा से। कहते हैं कि अभी अभी नमस्कार भारत के तहत उड़ीसा के नयागढ़ क्षेत्र में कम प्रदूषण फैलाने वाले नए चूल्हे के इस्तेमाल से लोगों के जीवन में आए परिवर्तन पर नितिन श्रीवास्तव द्वारा पेश रिपोर्ट सुनी।
जी हाँ, नितिन श्रीवास्तव ने ये रिपोर्ट बहुत अच्छी की थी, उन तक आपकी बात पहुंचा दी गई है, और भविष्य में भी आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन अब अगर मैं चुप नहीं हुआ तो समय हमें चुप करा देगा। चलते चलते पता बता देते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003।
नमस्कार।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज रांची में खेला गया, और रांची में पहली बार कोई क्रिकेट टेस्ट आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीवन स्मिथ की शतकीय पारी और मैक्सवेल के विस्फोटक अर्धशतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन 4 विकेट पर 299 रन बना लिए। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय गेंदबाजों के लिए आज का दिन काफी मुश्किल भरा रहा, और दूसरी तरफ आज का दिन स्मिथ के नाम रहा जिन्होंने भारत के खिलाफ पिछले 7 मैचों में अपना 6ठा टेस्ट शतक जड़ा। शुरू में पिच धीमी थी और भारत के दोनों स्पिनर्स को इसमें कोई टर्न नहीं मिला, लेकिन बाद में स्मिथ ने अपना जादू दिखा दिया। दूसरी तरफ शशांक मनोहर ने आज ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है, और उनके जाने के बाद ये पद अब खाली हो चुका है। क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली का कहना है,
जो क्रिकेट सर्कल्स में कहा जा रहा है कि उनके किसी कोई उनके घर के मेंबर की तबीयत खराब है, तो इस वजह से उन्होंने लिखा भी है कि पर्सनल रीजंस के कारण जो है उन्होंने अपना राजीनामा दिया है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि उनको लग रहा है कि शायद वो आइसोलेट हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका और बांग्लादेश और जिम्बाब्वे ये इंडिया के साथ जुड़ गए हैं, तो वो वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचना चाह रहे हैं।
शायद इसीलिए क्रिकेट को कहा जाता है कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। खेल समाचारों में बस इतना ही।
और चलते चलते bbchindi.com से खबर, जहां फ्रांस में स्कूल में गोलीबारी की खबर है कि पुलिस ने, खबर कहती है कि पुलिस ने फ्रांस के दक्षिणी कस्बे ग्रास के एक स्कूल में हुई गोलीबारी के बाद 17 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। इस हमले में दो लोग घायल हो गए थे। अभी एक अभियुक्त की तलाश जारी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए और अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए आ सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। फिलहाल दिन भर में आज इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। फिलहाल अपूर्व कृष्ण को अनुमति दें। नमस्कार।